एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे शब्द पर और एक विचार पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे जिसे सुनते ही शायद दिमाग में कुछ और ही तस्वीरें बनती हैं, रोमांटिसिज्म।
हाँ,
और इसके लिए हम माइकल फर्बर की किताब रोमांटिसिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन को मतलब अपना गाइड बनाएंगे।
हाँ, और रोमांटिक ये शब्द सुनते ही अक्सर वो दिल, फूल, प्रेम कहानियां यही सब याद आता है ना?
बिल्कुल।
लेकिन फर्बर की ये किताब बताती है कि भाई ये तो बस ऊपरी बात है। रोमांटिसिज्म असल में एक बहुत बड़ा और असरदार सांस्कृतिक आंदोलन था
हाँ, बहुत बड़ा।
जिसने करीब 200 साल पहले यूरोप में कला, साहित्य, राजनीति, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी मतलब हिलाकर रख दिया था।
सही।
तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये था क्या, और आज की इस भागदौड़ भरी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में भी ये क्यों काम का है।
ये सवाल वाकई दिलचस्प है। आज जहाँ हर चीज डेटा, लॉजिक, एफिशिएंसी इसी से चलती है, वहां भावनाओं की बातें, कल्पना की या प्रकृति से गहरे जुड़ाव की
हाँ
या फिर अकेले व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया की बातें, ये शायद थोड़ी अजीब लगे।
हाँ लगती तो है,
लेकिन फर्बर दिखाते हैं कि ये रोमांटिक विचार मतलब मरे नहीं है, वो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है, और शायद आज इनकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है।
तो चलिए इस सोच के समंदर में उतरते हैं। फिर शुरुआत करते हैं लेखक से, माइकल फर्बर। ये कौन है और इनकी बात सुनना क्यों जरूरी है?
हाँ, तो माइकल फर्बर न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और मानविकी के प्रोफेसर एमेरिटस हैं, मतलब अपने विषय के माहिर और अनुभवी जानकार हैं।
अच्छा,
और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने रोमांटिक दौर के कवियों पर, खासकर विलियम ब्लेक और पर्सी शेली,
हाँ, सुना है नाम।
जो थोड़े ज्यादा बागी और मतलब क्रांतिकारी विचारों वाले कवि थे, उन पर बहुत गहरा काम किया है।
अच्छा,
उनकी दूसरी किताबें हैं जैसे द पोएट्री ऑफ शेली या द सोशल विजन ऑफ विलियम ब्लेक, ये दिखाती हैं कि वो सिर्फ कविताओं के शब्दों में नहीं जाते, बल्कि उनके पीछे का जो समाज है, जो विचार हैं, उनमें भी उतरते हैं।
फॉरवर्ड की एक और खास बात है उनका नजरिया, है ना?
जी,
वो सिर्फ साहित्य को अलग से नहीं देखते,
बिल्कुल नहीं।
बल्कि उसे उस दौर की राजनीति, फलसफा, चित्रकला और जो सामाजिक उथल पुथल थी, खासकर वो फ्रांसीसी क्रांति,
हाँ, वो तो बहुत अहम थी।
उससे जोड़कर देखते हैं।
जी,
वो कई अलग अलग धागों को एक साथ लाकर तस्वीर पूरी करते हैं।
सही कहा। उनके लिए रोमांटिसिज्म कोई म्यूजियम में रखी पुरानी चीज नहीं है।
अच्छा,
नहीं, वो उस तूफानी दौर की धड़कन है, एक जिंदा रिएक्शन। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इन भारी भरकम जटिल विचारों को बहुत साफ और आसान भाषा में समझाते हैं। इसीलिए उनकी इस वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन किताब मतलब इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी इंसान के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है।
तो अब आते हैं किताब पर, रोमांटिसिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसका मकसद क्या है?
देखिए, ये किताब हमें रोमांटिसिज्म के फैले हुए और हाँ, अक्सर गलत समझे जाने वाले नक्शे का एक छोटा मगर
सारगर्भित गाइड देती है।
गाइड जैसा।
हाँ,
ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक सफर है जो हमें इस आंदोलन की अलग अलग, कभी कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उलट धाराओं को समझने में मदद करता है।
और ये किताब है किसके लिए? सिर्फ लिटरेचर या आर्ट्स के छात्रों के लिए?
नहीं, सिर्फ उनके लिए नहीं। अगर किसी को इतिहास में रुचि है या कोई ये समझना चाहता है कि आज हम जैसे सोचते हैं, मतलब व्यक्ति की आज़ादी, प्रकृति का सम्मान, अपनी भावनाओं को अहमियत देना,
हाँ, ये सब बातें हैं।
हाँ, तो इन विचारों की जड़ें कहाँ हैं, ये किताब उनके लिए भी है।
दिलचस्प बात यह है कि फर्बर इसे किसी टाइमलाइन या देश के हिसाब से नहीं बताते,
नहीं,
वो हमें थीम के हिसाब से यात्रा कराते हैं। और ये यात्रा शुरू होती है खुद रोमांटिक शब्द की कहानी से, कि ये शब्द आया कहाँ से और वक्त के साथ इसका मतलब कैसे बदला।
बिल्कुल। तो किताब के कुछ बड़े तर्क क्या हैं? पहला तो यही कि रोमांटिसिज्म कोई एक ठोस संगठित आंदोलन नहीं था,
अच्छा,
बल्कि विचारों, एहसासों और स्टाइल का एक मिलाजुला, काफी जटिल सा ताना बाना था, जो करीब आप कह लें 1770 से 1850 तक चला। दूसरा, ये उस दौर के कुछ बड़े ट्रेंड्स के खिलाफ एक रिएक्शन था,
जैसे कि
जैसे कि वो एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन काल का सिर्फ तर्क पर बहुत ज्यादा जोर।
हाँ, रीजन, लॉजिक।
हाँ, फिर औद्योगिक क्रांति से समाज और पर्यावरण पर जो बुरे असर पड़ रहे थे वो, और नियो क्लासिसिज्म मतलब कला के पुराने सख्त नियम कायदे,
उनके खिलाफ।
नियो क्लासिसिज्म वो जो ग्रीक रोमन स्टाइल वाला एकदम संतुलित व्यवस्थित।
हाँ बिल्कुल वही, एकदम नियमों में बंधी हुई कला।
रोमांटिक्स को वो पसंद नहीं था।
और तीसरा और शायद सबसे अहम तर्क,
तीसरा ये कि इसने पश्चिमी दुनिया का व्यक्ति को देखने का, प्रकृति को, भावना को और यहाँ तक कि कला के मकसद को देखने का नजरिया ही बदल दिया
पूरी तरह से।
हाँ, काफी हद तक। फॉबर ये भी बताते हैं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई।
हाँ, आपने पहले जिक्र किया था।
जब उस क्रांति की उम्मीदें टूटी तो लोगों का ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अपने अंदर की दुनिया और प्रकृति की तरफ मुड़ा।
अच्छा।
किताब ये भी दिखाती है कि कैसे प्रकृति को एक जिंदा ताकतवर शक्ति के रूप में देखा जाने लगा और कैसे दूसरी चीजों में दिलचस्पी बढ़ी, जैसे रहस्यमयी कहानियां, गॉथिक स्टाइल, मध्य युग या पूरब की संस्कृतियां। और इन सब का असर फिर पेंटिंग और संगीत पर भी पड़ा।
और आखिर में किताब इस बात पर जोर देती है कि रोमांटिसिज्म की विरासत वो आज भी जिंदा है।
बिल्कुल, व्यक्ति की कीमत, प्रकृति का वो आध्यात्मिक पहलू, भावनाओं की ताकत और कलाकार की एक बागी, दुनिया से थोड़ी अलग छवि, ये सब विचार आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
तो चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। फर्बर की किताब का पहला पड़ाव है खुद रोमांटिक शब्द। वो कहते हैं कि इस शब्द का सफर ही आंदोलन को समझने की चाबी है। ये शब्द आया कहाँ से?
हाँ, तो इसकी जड़ें हैं पुराने फ्रांसीसी शब्द रोमांस में।
रोमांस?
हाँ, ये उन कहानियों के लिए इस्तेमाल होता था जो लैटिन जैसी मुश्किल किताबी भाषा में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा में लिखी जाती थीं।
अच्छा।
जिनमें बहादुरी, रोमांच और प्यार की बातें होती थीं। सोचिए, उस समय ये अपने आप में एक तरह का विद्रोह था मुश्किल भाषा के खिलाफ।
दिलचस्प। तो रोमांटिक का मतलब शुरू में आम लोगों की भाषा में लिखी कहानी जैसा कुछ था?
हाँ, कुछ वैसा ही। और धीरे धीरे ये शब्द उन कहानियों के मिजाज के लिए इस्तेमाल होने लगा, मतलब कल्पना से भरी, जज्बाती। फिर ये ऐसे नज़ारों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा जो उन कहानियों जैसे लगते थे, जंगली, खूबसूरत, दिल में विस्मय या थोड़ा डर पैदा करने वाले।
अच्छा।
18वीं सदी तक आते आते ये शब्द जुड़ गया संवेदनशीलता से, तीव्र भावनाओं से और पुराने क्लासिकल यानी सधे हुए शांत स्टाइल से हटकर कुछ करने से। बाद में जर्मनी के श्लेगल बंधुओं जैसे आलोचकों ने इसे बाकायदा क्लासिकल के उलट एक नई मॉडर्न कलात्मक भावना के तौर पर अपनाया।
तो मतलब ये समझना जरूरी है कि ये शब्द हमेशा बदलता रहा है, इसका कोई एक पक्का मतलब नहीं रहा।
बिल्कुल, इसीलिए फर्बर इस पर इतना जोर देते हैं।
ये तो हुई शब्द की बात। अब आते हैं उस घटना पर जिसने इस आंदोलन को असल में हवा दी, फ्रांसीसी क्रांति। फर्बर तो कहते हैं कि इसे समझे बिना रोमांटिसिज्म अधूरा है।
बिल्कुल, शुरुआत में तो यूरोप के पढ़े लिखे खासकर नौजवानों में गजब का जोश था। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्लेक जैसे कवियों को लगा कि बस अब आजादी और इंसानियत का नया दौर आ गया। वर्ड्सवर्थ ने लिखा भी था, उस सुबह जिंदा होना ही जन्नत थी, पर जवान होना तो जैसे स्वर्ग में होना था। कितनी उम्मीद थी।
लेकिन फिर क्या हुआ? ये उम्मीदें टूटी कैसे?
दी दूसरे देशों पर हमले करने लगा और नेपोलियन का सम्राट बनना तो जैसे आखिरी कील थी। सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई। लेकिन फर्वर कहते हैं कि इस गहरी निराशा ने रोमांटिक जज्बे को खत्म नहीं किया बल्कि उसकी दिशा बदल दी।
दिशा बदल दी कैसे?
अब कलाकारों और सोचने वालों को लगा कि सच्ची आजादी बाहर की राजनीति में नहीं बल्कि इंसान के अपने मन में, प्रकृति में और कला में मिल सकती है।
अच्छा, अंदर की तरफ मुड़ गए।
हाँ, यहीं से रोमांटिसिज्म का वो पहलू उभरा जो थोड़ा ज्यादा अपने अंदर झांकने वाला है, कभी कभी उदास सा लगता है।
और इसी निराशा और अंदर की तरफ मुड़ने से जुड़ा है अगला बड़ा थीम, व्यक्ति यानी द इंडिविजुअल। क्रांति की भारी दुनिया से मोहभंग हुआ तो फोकस अंदर की दुनिया पर आ गया।
हाँ, फर्बर बताते हैं कि रोमांटिसिज्म ने आर्ट और फिलोसफी का ध्यान आम इंसान, मैन, से हटाकर खास व्यक्ति, दी इंडिविजुअल पर लगाया, उसकी अपनी अनूठी, अंदरूनी और हाँ, अक्सर तकलीफों से भरी चेतना पर। अब हीरो वो नहीं जो समाज के लिए लड़े बल्कि वो जो अपने अंदर की सच्चाई खोजे।
तो इसमें किन चीजों पर जोर दिया गया, मतलब क्या खास बातें थीं?
तीन चीजें खास हो गईं, जीनियस यानी कुदरती प्रतिभा, ओरिजिनैलिटी यानी मौलिकता, किसी की नकल न करना, और सिंसियरिटी यानी ईमानदारी, अपने जज्बातों के प्रति सच्चा होना।
जीनियस, ओरिजिनैलिटी, सिंसियरिटी।
हाँ, कलाकार अब सिर्फ एक हुनरमंद कारीगर नहीं रहा, वो एक दूरदर्शी, एक पैगंबर जैसा बन गया, जिसके अपने एहसास और कल्पना ही उसकी कला का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट थे।
अच्छा,
इसके उदाहरण दिखते हैं आत्मकथाओं के चलन में, जैसे रूसो की कन्फेशंस, या उन कविताओं में जो बहुत निजी भावनाओं को जाहिर करती हैं। और हाँ, बायरोनिक हीरो।
बायरोनिक हीरो, ये क्या था?
ये एक खास तरह का किरदार था, जो उदास, समाज से कटा हुआ, बागी और रहस्यमयी होता था, कुछ कुछ उस दौर के मशहूर कवि लॉर्ड बायरन की तरह।
अच्छा, तो इसी सोच ने शायद कलाकार की वो इमेज बनाई जो आज भी हमारे दिमाग में है, थोड़ा अलग थलग, समाज के नियमों से परे, अपनी ही दुनिया में रहने वाला जीनियस।
बिल्कुल, और इसने सपनों, बुरे सपनों, यादों, तेज भावनाओं, मतलब इंसान के मन की हर परत को कला का विषय बना दिया।
व्यक्ति के बाद रोमांटिसिज्म का शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना पहलू है प्रकृति, यानी नेचर।
हाँ, ये तो रोमांटिसिज्म का दिल है, आप कह सकती हैं। फर्बर समझाते हैं कि रोमांटिक्स के लिए प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड या साइंस लैब में जांचने की चीज नहीं थी।
तो क्या थी?
वो इसे एक जिंदा, धड़कती हुई शक्ति मानते थे, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जीने का सही रास्ता पता चलता है और मन को शांति मिलती है।
किताब में सुंदर, ब्यूटिफुल और उदात्त, सब्लाइम का जिक्र है, ये क्या है, इनका फर्क क्या है?
हाँ, ये बड़ा जरूरी है। सुंदर तो हुआ वो नज़ारा जो आंखों को अच्छा लगे, मन को शांत करे, जैसे कोई हरी भरी घाटी या शांत झील।
ठीक है।
लेकिन उदात, सब्लाइम, वो अनुभव है जो आपको हिला कर रखते, आपके अंदर विस्मय के साथ साथ थोड़ा डर भी पैदा करे।
डर?
हाँ, हल्का सा। सोचिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, गरजता हुआ तूफान या अंतहीन समंदर। इन्हें देखकर लगता है कि हम कितने छोटे हैं और ये कुदरत कितनी विशाल और ताकतवर है।
हाँ, ये एहसास तो होता है।
ये अनुभव आपको आपकी औकात याद दिलाता है, लेकिन साथ ही आपको किसी बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ा हुआ भी महसूस कराता है। ये उदात्त अनुभव है।
ये तो बड़ी गहरी बात है। तो ये नजरिया उस वक्त के दूसरे नजरियों से कैसे अलग था? मतलब उस वक्त लोग प्रकृति को कैसे देखते थे?
फर्बर तुलना करते हैं। एक तरफ था न्योक्लासिकल नजरिया, जहां सजे संवरे, इंसानी काबू में रखे बगीचे पसंद किए जाते थे। दूसरी तरफ थी औद्योगिक क्रांति की सोच, जहां प्रकृति सिर्फ कच्चा माल थी जिसका बस इस्तेमाल करना है,
शोषण करना है।
हाँ, शोषण करना है। रोमांटिक्स ने इन दोनों को नकार दिया। उनके लिए प्रकृति पूजनीय थी। वर्ड्सवर्थ की कविताओं में लेक डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ और झीलें जैसे जिंदा टीचर बन जाते हैं। जॉन कॉन्स्टेबल की पेंटिंग्स इंग्लैंड के बदलते देहात का दर्द दिखाती हैं, और कैस्पर डेविड फ्रेडरिक की वो मशहूर पेंटिंग वॉन्डरर अबव द सी ऑफ फॉग।
हाँ, देखिए, शायद एक आदमी बादलों के ऊपर खड़ा है।
वही, वो इसी उदात्त अनुभव का निचोड़ है।
प्रकृति के अलावा रोमांटिक्स को अन्य, द अदर, में भी बड़ी दिलचस्पी थी। ये अन्य क्या था, मतलब दूसरा?
अन्य मतलब वो सब कुछ जो उस वक्त के यूरोप के जाने पहचाने दायरे से बाहर था।
क्या मतलब, कौन सा दायरा?
मतलब ग्रीक रोमन क्लासिकल परंपरा, वो तर्कवादी सोच, और 18वीं सदी की जो मुख्य धारा थी, उससे बाहर की हर चीज।
अच्छा, तो इसमें क्या क्या आता था?
कई चीजें। पहला, मध्यकालीन अतीत। ग्रीस और रोम की बजाय मध्य युग को लेकर एक रोमानी आकर्षण पैदा हुआ, शूरवीर, पुराने किले, रहस्यमयी कैथोलिक कहानियां।
हाँ, वो हॉलीवुड फिल्मों वाले।
हाँ, कुछ वैसा ही, पुराने किलों जैसे दिखने वाले घर, गॉथिक रिवाइवल बनने लगे, वॉल्टर स्कॉट की इवानहो जैसे उपन्यास लिखे गए।
और क्या था इस अन्य में?
दूसरा, लोक कथाएं और राष्ट्रीय पहचान। आम लोगों की कहानियों, लोकगीतों, मिथकों को इकट्ठा करने का चलन शुरू हुआ, जैसे जर्मनी में ग्रिम भाइयों ने किया।
अच्छा, ग्रिम की कहानियां।
हाँ, वही। ये अक्सर देशों में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश, राष्ट्रवाद से जुड़ा था। तीसरा था दूर दराज के अजनबी देश, खासकर पूरब, मतलब मध्य पूर्व और एशिया, इसे ओरिएंटलिज्म भी कहते हैं।
ओरिएंटलिज्म?
हाँ। हालांकि फर्ब बताते हैं कि ये आकर्षण अक्सर ऊपरी और रूढ़िवादी सोच पर आधारित था। पूरब को जादू टोने, अय्याशी और तानाशाही की जगह समझा जाता था। कॉलरिज की मशहूर कविता कुबला खान इसी कल्पना की उड़ान है।
अन्य की बात करते हुए अलौकिक, द सुपरनेचुरल का भी जिक्र आता है। इसमें रोमांटिक्स की क्या दिलचस्पी थी? ये तो डरावना लगता है।
ये बहुत अहम है। रोमांटिक्स तर्क की दुनिया से मतलब ऊब चुके थे। उन्हें रहस्य, अनदेखी दुनिया और इंसान के मन के अंधेरे कोनों में झांकने में मजा आता था।
अच्छा।
हाँ, ये एनलाइटनमेंट के सिर्फ तर्क और विज्ञान पर भरोसे के खिलाफ सीधा विद्रोह था।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है फिर?
गॉथिक उपन्यास।
गॉथिक नॉवेल।
सोचिए, डरावने पुराने महल, छिपे हुए राज, भूत, प्रेत, पागलपन, ये सब।
हाँ, आजकल भी फिल्में बनती हैं इस पर।
बिल्कुल। हॉरिस वॉलपॉल की द कासल ऑफ ऑट्रेंटो से ये चलन शुरू हुआ और फिर आई मैरी शेली की फ्रैंकेंस्टीन।
फ्रैंकेंस्टीन, वो तो बहुत मशहूर है।
हाँ, और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये विज्ञान के अहंकार पर एक सवाल है। डॉक्टर फ्रैंकेंस्टीन जो जिंदगी बनाना चाहता है और ये भी पूछती है कि असल में राक्षस कौन है और अकेलापन इंसान को क्या बना सकता है।
गहरी बात है।
हाँ, ये उस दौर के कलाकारों जैसे विलियम ब्लेक या गोया, उनकी डरावनी ब्लैक पेंटिंग्स याद कीजिए, कि रहस्यमय दुनिया से जुड़ता है।
तो ये सारे जज्बात, ये प्रकृति प्रेम, ये रहस्य, क्या ये सिर्फ लिखने पढ़ने तक ही सीमित था या कहीं और भी दिखा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्बर दिखाते हैं कि यही सारे विषय चित्रकला और संगीत में भी उतने ही जोरदार तरीके से उभरे।
पेंटिंग में कैसे?
पेंटिंग में देखिए, पहले की न्यू क्लासिकल पेंटिंग्स जैसे जैक्स लुई डेविड की बहुत शांत, संतुलित, नियमों में बंधी होती थी। रोमांटिक्स ने इसमें रंग भरा, गति भरी, ड्रामा भर दिया। जेएमडब्ल्यू टर्नर के तूफानी समंदर देखिए, लगता है लहरें कैनवास से बाहर आ जाएंगी।
हाँ, टर्नर की पेंटिंग्स तो कमाल हैं।
जॉन कॉन्स्टेबल के इंग्लैंड के गांव देखिए, उनमें एक उदासी है, एक नॉस्टैल्जिया है। यूजीन डेलाक्रॉइक्स की लिबर्टी लीडिंग द पीपल में क्रांति का जोश है। और फ्रांसिस्को गोया की द 3rd of May 1808 वो युद्ध की वहशत को सीधे आंखों के सामने ला देती है।
और संगीत में?
संगीत में क्या हुआ?
संगीत में लुडविग वैन बीथोवन का नाम सबसे बड़ा है।
बीथोवन? हाँ, उन्होंने पुराने क्लासिकल नियमों को तोड़ा और ऐसा संगीत बनाया जिसमें जबरदस्त भावनाएं थी, नाट्यता थी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थी। उनकी सिम्फनी, खासकर तीसरी इरोइका, हाँ, जो उन्होंने शुरू में नेपोलियन को समर्पित की थी, वो रोमांटिक हीरोइज्म और संघर्ष का प्रतीक बन गए। लगता है जैसे संगीतकार अपनी पूरी आत्मा उसमें उड़ेल रहा हो।
तो किताब के आखिर में फर्बर इस पूरी विरासत का निचोड़ कैसे निकालते हैं? क्या यह आंदोलन बस इतिहास बनकर रह गया या इसका कुछ असर बचा है?
फर्बर कहते हैं नहीं, ये 19वीं सदी के बीच में खत्म नहीं हुआ। इसने पश्चिमी संस्कृति की जड़ों को इतना सींचा है कि इसका असर आज भी महसूस होता है।
आज भी? कैसे?
बाद के कला आंदोलनों पर तो है ही, जैसे सिंबलिज्म, प्रतीकवाद और सररियलिज्म, अति यथार्थवाद, उन पर इसका साफ असर है।
और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच पर, उस पर भी असर है?
हाँ, वही असली विरासत है। खुद को खोजना, अपने दिल की सुनना, ये विचार रोमांटिक ही तो है।
हाँ, ये तुम रोज सुनते हैं।
पर्यावरण को बचाने की चिंता, प्रकृति के लिए सम्मान, इसकी जड़ें भी रोमांटिक सोच में हैं। देशों का अपनी खास संस्कृति पर गर्व करना, राष्ट्रवाद, ये भी वहीं से जुड़ा है। और कलाकार की वो छवि,
हाँ, वो बागी वाली,
हाँ, थोड़ा बागी, समाज से कटा हुआ, अपनी ही धुन में रहने वाला जीनियस, ये भी रोमांटिसिज्म की ही देन है। तो भले ही हम उस दौर में नहीं जी रहे, पर उसके सवाल और उसके दिए हुए मूल्य आज भी हमारे साथ हैं।
तो इस पूरी बातचीत से जो मुख्य बातें या संदेश निकल कर आ रहे हैं, उन्हें जरा समेटने की कोशिश करते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो रोमांटिसिज्म लाया, वो था व्यक्ति और उसके अंदरूनी अनुभव को सबसे ऊपर रखना।
बिल्कुल।
आपकी भावनाएं, आपकी कल्पना, आपकी आत्मा, यही सच्चाई और कला का असली सोर्स है। जैसे आज भी हम कहते हैं ना, दूसरों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो।
हाँ, बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है प्रकृति का महिमा मंडन। प्रकृति सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा शक्ति है, एक टीचर, एक मरहम लगाने वाली दोस्त और विस्मय जगाने वाली ताकत, वो उदात्त वाली बात।
हाँ, आज जब शहर की भागदौड़ से थक जाते हैं तो सुकून के लिए पहाड़ों या जंगलों की तरफ भागते हैं ना।
सही। भारत में तो नदियों, पहाड़ों का आध्यात्मिक महत्व हजारों साल से है। रोमांटिसिज्म ने पश्चिम में इसी तरह के गहरे जुड़ाव को आवाज दी।
तीसरा, कल्पना और भावना की ताकत, जो सिर्फ ठंडे तर्क से ज्यादा बड़ी है। रोमांटिक्स मानते थे कि सिर्फ दिमाग से दुनिया नहीं समझी जा सकती।
हाँ, तर्क काफी नहीं है।
कल्पना इंसान की सबसे ऊंची उड़ान है और भावनाएं रास्ता दिखाती हैं। आज भी हम मानते हैं कि बड़े फैसलों में सिर्फ लॉजिक नहीं, गट फीलिंग या दिल की आवाज भी सुननी चाहिए।
इसमें मैं दो और जोड़ना चाहूंगी,
चौथा, कलाकार की एक नई छवि बनी, वो जो दूर की सोचता है, जो समाज के कायदे तोड़ता है, जो सच बोलने का साहस रखता है, भले ही उसे कोई ना समझे।
हाँ, वो विद्रोही कलाकार।
हाँ, आज भी हम कलाकारों से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें आईना दिखाएं, सवाल उठाएं। और पांचवा, ये आंदोलन हवा में पैदा नहीं हुआ था, ये फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति जैसी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा था। ये याद दिलाता है कि कला हमेशा अपने वक्त से जुड़ी होती है, उस पर रिएक्ट करती है। और हाँ, व्यक्तिवाद की बात करें तो भारत जैसे समाज में जहाँ परिवार और समाज की उम्मीदें बहुत होती हैं,
हाँ बहुत ज्यादा,
वहाँ अपनी पहचान, अपनी इच्छाओं के लिए लड़ना आज भी एक बड़ा संघर्ष है। ये कहीं ना कहीं उसी रोमांटिक खुद के प्रति सच्चे रहो वाले विचार से जुड़ता है।
फेबर की किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जो इस आंदोलन के सार को पकड़ती हैं। कुछ ऐसे मुख्य विचारों पर फिर से गौर करते हैं जिन्हें हम किताब के मतलब यादगार कथन मान सकते हैं।
हाँ, जैसे पहला विचार जिसे फर्बर कुछ इस तरह कहते हैं, रोमांटिसिज्म कोई एक सिद्धांत नहीं बल्कि चेतना में एक क्रांतिकारी अंदर की ओर मोड़ था।
अंदर की ओर मोड़,
जिसने व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव, उसकी भावनाओं, कल्पना, आत्मा को जीवन और कला के केंद्र में रखा। ये दिखाता है कि ये कोई सतही बदलाव नहीं था बल्कि सोच की बुनियाद में ही एक क्रांति थी।
दूसरा विचार फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है।
हाँ,
फ्रांसीसी क्रांति रोमांटिक भावना की भट्टी थी। इसके आजादी के शुरुआती वादे ने उनकी सबसे ऊंची उम्मीदों को हवा दी और आतंक और अत्याचार में इसके पतन ने उनके गहरे मोहभंग को शक्ल दी। उन्हें आजादी राजपाठ में नहीं बल्कि खुद में और प्रकृति में खोजने पर मजबूर कर दिया। ये समझाता है कि इस आंदोलन में उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों इतने गहरे क्यों थे।
और तीसरा विचार प्रकृति के उदात्त अनुभव पर है।
हाँ, रोमांटिक्स के लिए एक पहाड़ सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये उदात्त सबलाइन से सामना था।
उदात्त से सामना,
ये विस्मय और आतंक का वो अनुभव था जो इंसान के अहंकार को तोड़ सकता था, उसके तर्क को बौना साबित कर सकता था और उसे एक ऐसी शक्ति से जोड़ सकता था जो शानदार भी थी और भयानक रूप से इंसानी समस्या परे भी।
ये दिखाता है कि प्रकृति प्रेम सिर्फ सुंदरता निहारना नहीं था बल्कि एक आध्यात्मिक खोज थी।
और चौथा विचार कलाकार की बदली हुई भूमिका पर।
बिल्कुल, कलाकार की छवि एक हुनरमंद कारीगर से बदलकर एक दूरदर्शी पैगंबर की हो गई। कला में महानता का पैमाना अब नियमों का पालन करना नहीं बल्कि मौलिकता, ईमानदारी और अपनी अनूठी अंदरूनी दुनिया को व्यक्त करने का साहस था।
साहस,
भले ही इसका मतलब समाज द्वारा गलत समझा जाना और अकेला पड़ जाना हो, इसने ही हमारे जीनियस और ओरिजिनल होने के आज के विचारों को जन्म दिया।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन विचारों का आज की जिंदगी में कोई असली इस्तेमाल है? क्या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली?
क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रकृति की कद्र करना। फॉरबर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति सिर्फ घूमने की जगह या इस्तेमाल की चीज नहीं, हमारे मन और आत्मा की खुराक है।
तो क्या करें?
शायद हम अपने फोन को जेब में रखकर पास के पार्क में थोड़ी देर टहल सकते हैं या कभी पहाड़ों जंगलों में वक्त बिता सकते हैं। डिजिटल दुनिया से कटकर असली दुनिया से जुड़ना।
हाँ, ये तो जरूरी है। और भावनाओं का क्या? आजकल तो हर कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल होने की बात करता है।
यही तो रोमांटिसिज्म याद दिलाता है कि भावनाएं और अंतर्ज्ञान भी उतने ही जरूरी हैं। अपनी गट फीलिंग पर थोड़ा भरोसा करना या जिस काम से सच में खुशी मिलती है उसे करने का जुनून पालना, ये रोमांटिक तरीके हैं जीने के। सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी जीना।
और वो खुद के प्रति सच्चा होना वाली बात, बी ट्रू टू योरसेल्फ,
ये तो आज भी उतना ही जरूरी है। दुनिया चाहे जो कहे, अपनी आवाज सुनना, अपनी पसंद नापसंद को अहमियत देना, भेड़ चाल में शामिल ना होना, ये सब अपनी मौलिकता को बचाए रखना है। आसान नहीं है पर जरूरी है।
राजनीतिक उम्मीदों और निराशाओं के बारे में भी कुछ सीखा जा सकता है इनसे।
हाँ, रोमांटिक्स की कहानी वो क्रांति के जोश से लेकर गहरी निराशा तक का सफर हमें सिखाती है कि बदलाव की चाहत अच्छी है पर आंखें मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। ये हमें आज के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को ज्यादा संतुलित और आलोचनात्मक नजरिए से देखने में मदद करता है, उम्मीद और हकीकत के बीच तालमेल रखना।
और कला, क्या पेंटिंग या संगीत सुनने का हमारा नजरिया बदल सकता है इसे समझकर?
बिल्कुल, रोमांटिसिज्म को समझने के बाद आप टर्नर की पेंटिंग में सिर्फ रंग और लहरें नहीं देखेंगे बल्कि प्रकृति की वो उदात्त ताकत महसूस कर सकते हैं।
अच्छा,
बीथोवन की सिम्फनी में सिर्फ धुनें नहीं बल्कि एक इंसान के संघर्ष और जीत की कहानी सुन सकते हैं। ये हमें कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे अर्थों, भावनाओं और विचारों को समझने का जरिया बना सकता है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा और किताब से सबसे बड़ा सबक ये रहा कि रोमांटिसिज्म सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में एक ऐसा बदलाव था जिसका असर आज तक है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके मूल विचार, अपनी सच्चाई खोजना, प्रकृति से जुड़ना, कल्पना की उड़ान भरना, आज की इस सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में भी कितने ताज़े और ज़रूरी लगते हैं।
और मुझे सबसे दिलचस्प ये लगा कि फॉबक कैसे इतने बिखरे हुए, कभी कभी आपस में विरोधी लगने वाले विचारों को एक साथ लाकर एक साफ तस्वीर पेश करते हैं,
बिना उन्हें जरूरत से ज्यादा आसान बनाए।
हाँ, ये उनकी खूबी है।
ये किताब दिखाती है कि रोमांटिसिज्म को समझना असल में आज की दुनिया के जड़ों को समझना है, और उन पुरानी लेकिन हमेशा ताजी रहने वाली कश्मकशों को समझना है। तर्क बनाम भावना, समाज बनाम व्यक्ति, इंसान बनाम प्रकृति, ये सिर्फ गुजरे कल की कहानी नहीं बल्कि आज की उलझनों को सुलझाने का एक औजार भी हो सकता है।
क्या हम आज तर्क और टेक्नोलॉजी पर इतना निर्भर हो गए हैं कि हमने भावनाओं और प्रकृति की पुकार सुनना बंद कर दिया है? ये सवाल रोमांटिसिज्म आज भी हमसे पूछता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।